2 फरवरी सन 67 का प्रातः क्लास पहला पेज नीचे नीचे रूहानी बच्चों पर बाप का गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति बाप का गुड मॉर्निंग और जिस्मानी स्टेज में बैठे हो तो उनके लिए गुड मॉर्निंग नहीं, सच सेट पॉइंट भी याद दिलाएंगे क्या? सन 67 और उसके बाद कौन सा सन आने वाला है? 68 68 में शरीर छोड़ दिया है। तो सनसेट पॉइंट की यादगार बन गई, लेकिन यहां किन बच्चों के प्रति गुड मॉर्निंग बोला? जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चों के लिए बोला या रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों के लिए बोला? रूहानी स्टेज में होंगे तो मीठे मीठे भी होंगे। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। गुड मॉर्निंग कब से होती है? अंग्रेजों की गुड मॉर्निंग 12 बजे से होती है, 12 बजे के बाद। तो गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। क्यों? 12 बजे के पहले याद कर ले तो क्या आ जाए? कुछ आ जाए क्या? हाँ, रात के 12 बजे के बाद ही शिव सुप्रीम सोल बाप के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला कि गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। अच्छा, 67 में याद करते थे, उससे पहले याद करते थे तो बाप को याद नहीं करते थे? याद करते थे या नहीं करते थे? करते तो थे, लेकिन बाप का एक्यूरेट स्वरूप याद नहीं आता था। समझते थे कि हम आत्मा बिंदु हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, ज्योति बिंदु, उस स्वरूप को याद करते थे। बिंदु बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता, और जब शरीर धारण नहीं करेगा बाप के रूप में तो गुड मॉर्निंग भी नहीं हो सकता। क्यों? माँ के रूप में गुड मॉर्निंग क्यों नहीं? बाप के रूप में गुड मॉर्निंग क्यों बोला? माँ के रूप में जो पार्ट बजाया वो अधूरा ज्ञान था। गीता ज्ञान तो था, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं था, क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए कोई भी समझ में नहीं आया कि किस रूप को याद करने से हमारा और सारी दुनिया का कल्याण होगा। ऊंची से ऊंचे बाप को याद करने के लिए बोला और न जानने के कारण ये समझ लिया कि ब्रह्मा ही ऊंचे से ऊंचे रूप है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे का सवाल तो प्रकाश सृष्टि पर होता है, निराकार दुनिया की बात नहीं, निराकारी दुनिया में बिंदु बिंदु आत्मा और उनका बाप, बाहुनी के ऊंच का सवाल नहीं, नीच से नीच का सवाल नहीं। अब ब्रह्मा के तन में आकर की ये वाणी बोल रहा है तो भी इशारा दे रहा है कि गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद। माने 68 में गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, क्या हुआ? सनसेट पॉइंट हुआ या सूर्योदय हुआ? सनसेट पॉइंट हुआ। और ये पॉइंट कहाँ हुआ, यादगार कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू। तो वहां सूर्य आप्त तो हुआ 68 में, सूर्योदय नहीं हुआ, इसलिए उस समय नहीं कहेंगे कि गुड मॉर्निंग हुआ। और बच्चे बाप को याद करें, क्योंकि बाप का ज्ञान ही किसी को नहीं था। बाप बाप के रूप में आवेगा तो बच्चों को वर्षा देकर के जावेगा ना, या ऐसे ही शरीर छोड़ करके चला जावेगा? प्रवेश करता है तो किस लिए प्रवेश करता है? प्रवेश करता है पतितों को पावन बनाने के लिए, सारी सृष्टि को पावन बना कर जाता है, तो बीच में कैसे चला जाएगा? दुनिया में भी ऐसे समझते हैं कि कोई काम मनुष्य शुरू करे तो जब तक वो पूरा न कर ले तब तक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, जो एक कार्य को शुरू करे तो उसको पूरा करके छोड़े। ब्रह्मा के द्वारा कार्य तो हुआ, बच्चों के सामने गीता ज्ञान तो आया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत के रूप में नहीं आया। अमृत कलश तैयार नहीं हुआ, अमृत या साल या मक्खन बनता ही तब है जब उसको मंथन किया जाए। तो 68 से पहले बच्चे सुनते रहे, रखते रहे, लेकिन उसकी गुह्यता क्या है, गहराई क्या है, उस पर मनन चिंतन मंथन किसी का नहीं चला। एडवांस पार्टी जब से शुरू होती है, एडवांस ज्ञान शुरू होता है, तो ज्ञानदाता बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे यज्ञ के आज में आया था बीजारोपण के लिए, ज्ञान का बीज बोया और गुप्त हो गया। जैसे धरणी में बीज बोया जाता है तो धरणी में समा जाता है, बीज गुप्त हो जाता है। थोड़े समय तक इंतजार तो करना पड़ता है ना, जब तक पौधा बन करके बाहर आए। ऐसे ही वो बीज तो धरणी में पड़ा लेकिन गुप्त रहा। 76 में बोला गया बाप का प्रत्यक्ष तवर्ष, तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष अर्थ ही गलत लगा लिया। क्या लगा लिया उस समय? बाप की प्रत्यक्षता वर्ष का अर्थ क्या लगा लिया? ये 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाते। अब ये तो बात ही नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में सबको एक साथ एक सेकंड में संदेश मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार की बात होती नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा के रूप में, माँ के रूप में शिव ने पाठ बजाया, जो गायने तुम्हें व माता क्या पिता तुम्हें तो क्या पिता बाद में जो भक्ति मार्ग में जो गायन करते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तो माता को पहले क्यों रखा गया भक्ति मार्ग में? जरूर जब भगवान आया होगा तो किस रूप में बच्चों के सामने आया? पहले माँ के रूप में आए, इसलिए भक्ति मार्ग वाले भी माँ का नाम पहले रखते हैं और बाप का नाम बाद में रखते हैं। तो मृदुल पाठ बजाने वाले जो कृष्ण की सोल है, ब्रह्मा के रूप में कलयुग के अंत में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है, प्यार देती है, पालना देती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान सूर्य पश्चिम से प्रत्यक्ष होता है या पूर्व से उदय होता है? और ब्रह्मा बाबा कहाँ से आए? सिंध हैदराबाद से आए। तो सिंध हैदराबाद से सूर्योदय थोड़ा ही होता है, तो पश्चिम हो गया। हाँ, सिंध हैदराबाद छोड़ करके जब माउंट आबू आए और माउंट आबू में आने के बाद उनका देहावसान हो गया, तो जैसे कि जो सूर्य आत्मा उसमें काम कर रही थी माँ के रूप में, वो भी तो बाल यादगार बन गई। थोड़े समय के बाद जैसे ही यज्ञ के आज में जो बीज बोया गया था ज्ञान का बीज, और जिसने बोया था प्रैक्टिकल में, वो जो प्रैक्टिकल स्वरूप होगा जिसके द्वारा वो ज्ञान का बीज बोया गया, ब्रह्मा तो धारण करने वाला हुआ। और भी जो माताएं थी वो भी धारण करने वाली धरणी हुई। तो जो बीज बोने वाला पिता था वो 76 में आकर के कितने साल का हुआ? 7 साल में प्रवेश था बालवत्स अवस्था में, और 40 वर्ष दूसरे, तो टोटल कितना हुआ? 104 साल पूरा हुआ। 76 में 100 साल ब्रह्मा की आदि ब्रह्मा की आयु पूरी होने से शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा की आयु 100 साल, मुरली में भी बोला हुआ है ब्रह्मा 100 साल की एज में खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा जब मृत्यु लोक में खलास हो जाता है तो उसकी आत्मा कहां प्रवेश कर जाती है? अमर लोक में प्रवेश कर जाती है। जरूर अमर लोक तभी कहा जाएगा जब अमरनाथ मौजूद हो। अमरनाथ मौजूद न हो और अमर लोक कहा जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो 76 के बाद कोई ऐसी आत्मा है जो यही की आज में बीजारोपण करने वाले बाप के रूप में पार्ट बनाने वाली थी, और 100 साल पूरे होने के बाद अमरनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होती। अमर किसे कहा जाता है? मर, मर माना मरने वाला, मृत्यु लोक का वासी, और अमर न मरने वाला। आ माना न मरने वाला। मनुष्यों की मृत्यु होती है, देवताओं की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु होती है। जब चाहते हैं तो शरीर छोड़ते हैं, नहीं चाहे तो शरीर नहीं छोड़ते हैं। तो उनको कहा जाता है अमर, और उनका नाथ उनका स्वामी। तो अमर माना देवताएं, और देवताओं का स्वामी तो जरूर महादेव होगा। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने शिवा और महादेव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक ही है, ये तो नहीं कहते अलग अलग है। कहते हैं शिव शंकर एक है, माना शिव की सोल उस शंकर के स्वरूप में प्रवेश करके उस आत्मा को भी आप समान बना देती है। जो ज्ञान शिव के अंदर है वही ज्ञान शंकर में समा जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है मैं जो ज्ञान देता हूँ वो पहले पहले सूर्य को देता हूँ, सूर्य से फिर और सितारों को, चांद सितारों, उपग्रहों, ग्रहों को मिलता है। तो ये है चैतन्य सितारे। सितारों में नंबर वार होते हैं। एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। उससे पहले जो ज्ञान मिला था वो था बेसिक नॉलेज, गहराई नहीं थी। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के दोहे होते हैं, चौपाइयां होती हैं, तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे रट लेते हैं, उनके गहरे अर्थ को नहीं जानते। फिर उन्हीं चौपाइयों को, उन्हीं कविताओं को, उन्हीं दोहों को BAMA की ऊंची क्लास में जाकर के पढ़ते हैं, तो एक एक कविता और एक एक कविता की गहराई में उतरते हैं, लंबा लंबा विस्तार का अर्थ निकल आता है। तो ऐसे ही जो गीता ज्ञान आया, गीता ज्ञान कहे या उसे ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद वाणी कहे, उसकी यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माना जानना, वेद माने जिनमें जानकारी भरी हुई है। ऐसे वेद की ऋचाओं को अथवा उनके ट्रांसलेशन को हम पढ़ें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक ऋचा का दूसरी ऋचा से कोई लिंक ही नहीं बैठेगा अगर उन ऋचाओं का क्लैरिफिकेशन न किया जाए। वो क्लैरिफिकेशन मनुष्य गुरु नहीं कर सकते। सही क्लैरिफिकेशन क्या है वो तो भगवान ही जब सृष्टि पर आता है तो बताता है। तो वेदवाणी वो यादगार है जो चार वेद बनाए हुए। वास्तव में है इस संगम युग की बात। परमात्मा शिव ने आकर के ब्रह्मा के साकार स्वरूप के द्वारा जो वाणी सुनाई वो वेदवाणी हमारे सामने आई। उस वेदवाणी को गीता ज्ञान के रूप में अमृत बना करके संसार के सामने पेश करने का कार्य भी भगवान शिव को ही करना पड़ता है। वो शिव यज्ञ की आद में बाप के रूप में बीजारोपण करता है, दादा नेत्रादि ब्रह्मा के रूप में वेदवाणी या गीता ज्ञान बनकर के सामने आता है, और एडवांस पार्टी जब बनती है तो जो एडवांस पार्ट है जिसे अमरनाथ कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, जिस देव का ये पार्ट मुदा हुआ है, ब्रह्मा का पार्ट मुदा हुआ है या ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तैयार हुए, ऐसे ही देवता जिसके द्वारा तैयार हुए, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, तो देवता किसके द्वारा? विष्णु स्वरूप के द्वारा देवता। विष्णु स्वरूप को बनता ही तब है जब लव और ला का बैलेंस होता है, लव फुल माता और ला फुल बाप, महादेव जिसे कहा जाता है। तो महादेव ज्ञान सूर्य के रूप में साकार सृष्टि पर उदय हुआ, पहले ब्राह्मण की दुनिया में उदय हुआ, बाहर की दुनिया बाद में पहचाने, ब्राह्मणों में भी नंबर बार पहचानने वाले, उनके लिए बोला कि रात्रि के 12 बजे से जब गुड मॉर्निंग कहना शुरू होता है तो ये परंपरा कहां से पड़ी? इस संगम युग में परंपरा। फिर बच्चों को कहा जाता है गुड मॉर्निंग, माने बाप आ गया, यानी सूर्य उदय हुआ, अब गुड मॉर्निंग हुआ, माने 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए, मृत्यु लोक खलास हुआ और सतगुरु की सवेरा शुरू हुआ। क्या हुआ सतगुरु की सवेरा हुआ क्या है? अरे गुड नाइट किसे कहा जाता है और गुड मॉर्निंग किसे कहा जाता है? गुड नाइट कब कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा जब आते हैं गुलजार दादी में तो हमेशा कहते हैं गुड नाइट, वो तो गुड मॉर्निंग कहते नहीं। मुरलियों में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन उसका अर्थ बताया गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो, क्योंकि गुड मॉर्निंग होता ही रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे जब गुड मॉर्निंग होता है तो उसका कारण यह है कि जो आज ब्रह्मा है उसकी 100 साल आयु मृत्यु लोक में पूरी होती है और उस आत्मा विशेष के लिए मॉर्निंग ज्ञान का सवेरा शुरू होता है। तो जिस आत्मा विशेष के लिए ज्ञान का सवेरा शुरू होता है तो वही तो कहेगा बच्चों को क्या गुड मॉर्निंग। जो बच्चे पहचानते रहेंगे वो भी कहेंगे बाप को गुड मॉर्निंग। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। आओ कैसे बनाएंगे पतितों को पावन? बिना ज्ञान के तो पतित पावन बनने वाले नहीं, क्योंकि पतितों को पावन बनाने के लिए संघ का रंग चाहिए। जो पावन देवता थे सतयुग त्रेता में वो पतित कैसे बने? जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे दूसरे देशवासी धर्म पिताएं सच्ची पर आए, उन्होंने अपना झूठा झूठा ज्ञान सुनाया, उनके संघ के रंग में आए, दृष्टि वृत्ति के संघ में आए, कर्मेंद्रियों के संघ में आए और देवताएं पावन से क्या बन गए? पतित देवता बन गए। तो अनेकों के संघ के रंग में आने से पतित बने, चाहे वो दृष्टि का संघ हो, चाहे वो वृत्ति का संघ हो, चाहे वाचा ज्ञान का संघ हो। ज्ञान तो होता ही नहीं है इनमें, जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनमें ज्ञान तो होता ही नहीं। देवताएं तो फिर भी देवताएं बने ज्ञान के आधार पर। भगवान ने आकर के उनको ज्ञान सुनाया, पहचान दी सृष्टि चक्र की, आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, नरक की, माया रावण की और राम की पहचान दी, तो देवताएं बने। अब देवताएं पतित कैसे बने? जो पावरफुल आत्माएं ऊपर से उतरी तब तक देवताएं कमजोर हो जाती हैं, सुख भोग से भोगते। आत्मा कमजोर कैसे बनती है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देवताएं तो द्वापर की शुरुआत में कमजोर हो गए थे और ऊपर से उतरी पावरफुल आत्माएं, लेकिन वो भी धर्मी थी। विपरीत धर्म विपरीत धारणाएं फैलाने वाली आत्माएं हैं, इसके विपरीत परमात्मा बाप की जो सिखाई हुई धारणाएं हैं उन धारणाओं के विपरीत ज्ञान सुनाने वाली। परमात्मा बाप आकर के जो धारणाएं सिखाता है उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? प्योरिटी। और वो क्या सिखाते हैं? वो जब से आते हैं तभी से इम्प्योरिटी का फाउंडेशन डालते हैं, माने विचार का फाउंडेशन डालते। वो विचार का फाउंडेशन, उसकी पकड़ में हम देवताएं देवात्माएं आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो मुकाबला भी करते हैं, कोई मुकाबला करने में उतने समर्थ नहीं होते। जैसे इस्लाम धर्म का जो आधारभूत तो होगा जिसमें इब्राहिम को प्रवेश करना होगा, तो वो तो इस्लाम धर्म का आधार रहा है, तो कमजोरी तो उसमें जन्म जन्मांतर की द्वापर की आग से ही भर गई ना, इतनी भरी हुई थी कि जो भारत के फर्स्ट क्लास देवताएं थे 84 जन्म लेने वाले, वो तो एक की पूजा किया उन्होंने, किसकी? एक शिव की पूजा की। और इस्लामियों ने क्या किया? ढेर सारी मूर्तियां, ढेर सारे देवताओं की याद करते रहे इब्राहिम के आने के साथ ही साथ, क्योंकि इब्राहिम ने आते ही दृष्टिवृत्ति का करप्शन फैलाया, तो वो आराम से आसक्त हो गए बेचारे। तो जरूर कुछ ऐसी आत्माएं थी भारत में उस समय भी, द्वापर की आदि में भी, जिन्होंने उन विधर्मियों का मुकाबला किया। वो थी सूर्यवंशी आत्मा, सूर्यवंशी आत्माओं ने मुकाबला किया और उनको खदेड़ करके दूर देश में अरब देशों की तरफ खदेड़ दिया। तो बाबा ने बोला रावण जब से आते हैं तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या झगड़ा शुरू होता है और अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते, उनको खदेड़ा गया तो झगड़ा हुआ ना, झगड़ा हुआ तो उन्होंने अरब देश में जाकर के अपनी राजाई अपना प्रबल वर्चस्व जमा दिया, दो प्रोविंस हो गए, दो दो प्रकार की धर्म की धारणाएं हो गई, दो दो मतें हो गई, दो दो कुल हो गए। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? शूटिंग पीरियड में भी जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, जो भी सरपंच है, दीदी दादी दादा है, वो झगड़ते हैं। अब झगड़ने का फैसला ये होता है अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दो, ये इस प्रोविंस की इंचार्ज जोनल इंचार्ज, वो उस प्रोविंस की जोनल इंचार्ज, 69 में ही जोनल इंचार्ज तैयार हो गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। तो द्वापर आने के बाद ही तो ये फ्रिक्शन शुरू होता है। नाम क्या रखा गया उस युग का? द्वोपर, द्वोपर माना है द्वैत शुरू हो गया। यज्ञ के अंदर जो कंट्रोलर एक था, सारे यज्ञ का एक स्थान से कंट्रोल करता था, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसे के हाथ में सत्ता आ गई कि फ्रिक्शन पड़ गया। फ्रिक्शन माना डिसयूनिटी, यूनिटी टूट गई। यूनिटी कैसे आती है? प्योरिटी माने जो आत्मा निमित्त बनी वो जन्म जन्मांतर की 63 जन्मों में प्योरिटी का वाइब्रेशन ग्रहण करने वाली आत्मा। और देवताएं इतने नीचे नहीं गिरते जितनी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नीचे गिर जाती है द्वापर युग की शुरुआत में, क्योंकि ऊपर से जो आत्माएं आती है वो कमजोर से कमजोर आत्माओं में ही प्रवेश करती है, कमजोर जो देवात्माएं होंगी उन्हीं में प्रवेश करती है, और देवात्माएं सबसे ज्यादा गिरी हुई होती है उनमें भी फिर नंबर बार। तो देवात्माओं के भी ग्रेड्स है, क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, ब्राह्मणों की कितनी कुड़ियां गाई हुई है? 9 कुड़िया, तो 9 प्रकार के ब्राह्मण हुए होंगे। ब्राह्मणों की कितनी कुड़िया गाई हुई है? 9 कुड़िया, तो 9 प्रकार के ब्राह्मण हुए होंगे। तो जो 9 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं उनमें से कोई सबसे जास्ती कमजोर भी वर्ग का भी होता हो, जो बहुत जल्दी नीचे गिरता है, वो कौन होगा? है इस्लाम धर्म में व्यभिचार सबसे ज्यादा फैलता है, वो सबसे ज्यादा नीचे गिरता है और गिराता भी है सारे संसार को और अपना राज्य करता है। क्या गिराते जाओ और राज्य करते जाओ, तो वो जो डिस यूनिटी शुरू होती है 69 से यज्ञ में कहो और द्वापर के आज से सारी दुनिया में कहो, वो यहां फाउंडेशन पड़ता है। यूनिटी प्योरिटी से आती है और इम्प्योरिटी से डिस यूनिटी होती है, फ्रिक्शन पड़ता है। सब जानते हैं जहां जहां शहरों में वैश्याले हैं वहां झगड़े जाति होते हैं, और जिन शहरों में वैश्याले नहीं है वहां झगड़े फसाद और गुंडागिरी उतनी नहीं होती। ये इम्प्योरिटी, ये विचार, ये दुनिया में फ्रिक्शन फैलाता है। अच्छी सी बात है, एक पति है और उसको एक पत्नी है और दोनों का संबंध सच्चा है, प्यार का है, पक्के प्यार का, तो परिवार में झगड़ा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता पति अनेक बीवियां रखने लगता है अथवा पत्नी अनेक शौहर रखने लगती है, तो आपस में दोनों के बीच में दरार तरेड़ जरूर पड़ जाती है और वाइब्रेशन घर का बिगड़ने लगता है। जब वाइब्रेशन घर का बिगड़ता है तो फिर नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा, नरक बनता है। तो जैसे घर घर की हालत है और घर घर के गिरने और उठने का साइंस बना हुआ है, ज्ञान बना, विज्ञान बना हुआ है, मनोविज्ञान बना हुआ है, वैसे ये सारी दुनिया भी वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा वसुधा पृथ्वी हमारा कुटुंब है, उस कुटुंब में अगर विचार पोषण होता है तो सारी दुनिया वैश्याले बन जाती है, और अगर अविविचारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, अविविचारी कर्म इंद्रिया बनती है, तो दुनिया में क्या स्थापन हो जाता है, स्वर्ग स्थापन। अभी अभी बाप बच्चों को यही बात सिखाने आए, कहां जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में रहना चाहते हो।
बच्चे तो सोचते हैं हम तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जाना तो स्वर्ग में चाहते हैं, तो इच्छा करने से स्वर्ग में चले जाएंगे क्या,
कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, करना धरना पड़ेगा। श्रीमत दी हुई है, क्या श्रीमत दी हुई है, पवित्रता से प्रॉस्पेरिटी आएगी, पीस आएगी, और अपवित्रता से ये पीस और प्रॉस्पेरिटी नष्ट हो जाए। तो संगम युग दुनिया में जो जितना पुरुषार्थ करता है प्योरिटी का प्रैक्टिकल में, वो अपने लिए उतना ही जन्म जन्मांतर का स्वर्ग कमा रहा है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग सत्य सत्य को त्रेता नहीं होता है। स्वर्ग कहां गया, स्वयं स्थिति, तो ऐसे नहीं कि स्वयं स्थिति में सिर्फ सत्य को त्रेता में रहते हैं, द्वापर कलयुग में कोई स्वयं स्थिति में रहता ही नहीं, क्या द्वापर कलयुग में सुखी परिवार और सुखी लोग नहीं देखे जाते, लेकिन बहुत कम संख्या में। देवता धर्म जो है वो प्राय लोप हो जाता है, प्राय लोप हो जाने का मतलब पूरा लोप नहीं होता, ऐसा नहीं कि दुनिया में सुख रहता ही नहीं है, बिल्कुल पसंद के खत्म हो जाता है, नहीं, अभी भी सुखी लोग देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे परिवार भारतवर्ष के अंदर है अभी भी, जो पूरा परिवार एक चूल्हे पर खाना खाता है, ढेर सारे बच्चे हैं, नौजवान, उनकी शादियां हैं और उनके बच्चे भी हैं, और पूरे परिवार का कंट्रोल एक हाथ में रहता है, जैसे कि पूरे परिवार का राजा मजान जो उसकी कही हुई बात को कोई टाल दे। तो ऐसे ऐसे परिवार विरद कहीं कहीं जो मौजूद है, उनसे ये साबित होता है कि इस दुनिया में कहीं न कहीं स्वर्ग अभी भी उन माहौल में पनप रहा है। तो नरक की दुनिया में भी वो सुख का नजारा देने वाला परिवार दिखाई पड़ रहा है ना। तो जब वो लेकिन वो बहुत कम सारी दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान का आता है तो सारी दुनिया का ऐसा नजारा बना देता है। इसलिए उसको भी आकर के एक ऐसा सैंपल पक्का तैयार करना पड़ता है जो नरक की दुनिया में स्वर्ग का सैंपल हो। क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत होगी तो एक इकाई से ही शुरू होगी ना। ईंटों का भट्ठा तैयार किया जाए तो पहली ईंट कोई तो निकलेगी, आम का बाग तैयार किया जाएगा तो कोई तो वृक्ष में पहला आम पकेगा, वाली पकेगा ना। तो ऐसे ही नरक की दुनिया के वासियों को स्वर्ग की दुनिया का वासी बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए नंबरवार आत्माएं तैयार होती है। जो नंबरवार आत्माएं तैयार होती जाती है वो नंबरवार माला में शुरू जाती है। पहली माला बनती है आठ की, वो पहली इकाई है परिवार की। उसके बाद 108 की, उसमें भी धीरे धीरे ऐड होती है। इसलिए बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसे नहीं कि आपका संगठन तैयार हो जाएगा तो तुरंत चुटकी मारते ही 108 की माला तैयार हो जाएगी? नहीं, उनमें क्रम बना हुआ है। जो भी धर्म है जितना उस धर्म के आने का पहले पहले चांसेस है वो उतना ही श्रेष्ठात्मा है। उस धर्म सूर्यवंशी पहले आते हैं, चंद्रवंशी बाद में आते हैं, इस्लाम वंशी उससे बाद में आते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते जाते हैं। मतलब जो आत्मा परमधाम से जितना पहले उतरती है उतनी ही श्रेष्ठ, और जितना बाद में उतरती है उतनी ही भ्रष्ट होती। धर्म का भी ऐसा ही सार, सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश, द्वापर में वैश्यवंश, और कलयुग में शूद्रवंशी धर्म उतरते। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका फाउंडेशन पहले तैयार किया है। वो आठ का परिवार जो है वो आठ ही नहीं होंगे, उनका भी बड़ा परिवार होगा। वो आठ तो है राजाई कुल के, तो जो आठ राजाई कुल के होंगे उनकी कोई अपनी अपनी प्रजाति तो होगी नहीं होगी है? उनकी अपनी प्रजाति होगी, तो वो प्रजा ऐसी क्वालिटी की प्रजा होती है जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ हो लेकिन धारणा नहीं कर पाती। क्या ज्ञान देंगे लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करते, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कंस्योल नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई कम होने की वजह से उनका पद मान मर्तबा भी कम हो जाएगा, प्रजावर्ग में चले जाए। पुरुषार्थ नहीं करते, प्योरिटी करते। हाँ, जब प्रत्यक्षता हो जाती है और ऐसे वायुमंडल उनको मिल जाता है तो यथा राजा तथा तथा प्रजा वो स्वतः ही पवित्र प्रजा बन जाए, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाली प्रजा। उनको कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। माने पुरुषार्थ करने वाले कितने? राज उपस्थित करके राजाई का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी है? नहीं, 16,108 आत्माएं हैं जो राज घराने में आने का पुरुषार्थ करती हैं, राज उपस्थित करती है। और बाकी जो है उनकी बुद्धि में बैठता नहीं पूरा, उस समय नहीं बैठता। फिर जब प्रत्यक्षता होती है तो वो आत्माएं बड़ी तीव्र गति से, क्योंकि उन्होंने संदेश तो लिया पहले ही, इसलिए वो आगे निकल जाती है और धर्मों की प्रजा के मुकाबले। माने पहले जन्म की जो प्रजा है, संगम युग की स्वर्णिम युग की जो प्रजा है, उस प्रजा की भी कोई विशेष क्वालिटी है। भले राजा नहीं बनते हैं लेकिन ज्ञान में बहुत शूढ़ होते हैं। क्यों शूढ़ होते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं वो सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने को सूर्य में मर्ज कर दिया है। क्या दिन में आसमान में सितारे नहीं होते हैं? होते नहीं, होते तो है लेकिन वो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते, अपना अलग से कोई ज्ञान नहीं सुनाते, माने मिक्सरिटी करके कोई ज्ञान संसार के सामने नहीं देते, और दूसरे दूसरे जो है वो कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स कर देते, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लामवंशी हो, या कोई भी वंशी हो। चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा रात में जब निकलता है तो राकापति कहा जाता है, राका माने रात, पति माने स्वामी, लेकिन उसकी रहवली में रहने वाले जितने भी सितारे हैं वो अपना अलग अलग प्रकाश मारते हैं कि नहीं मारते हैं? उनका अलग अलग प्रकाश होता है, कोई ज्यादा प्रकाशित होते हैं, कोई कम प्रकाशित होते हैं, कोई में प्रकाश नहीं होता है, दूसरे सितारों से प्रकाश लेने वाले हैं। माने वो अपने को चंद्रमा में मर्ज नहीं करते, नहीं करते हैं, इसलिए चंद्रमा विरल होता रहता है, कभी छोटा और कभी संपूर्ण। संपूर्ण वो तभी होता है जब ज्ञान सूर्य के संग में आता है। और दूसरी धर्म की आत्माएं जो है वो उस ज्ञान चंद्रमा को कमजोर बनाती है, इतना कमजोर बनाती है, इतना कमजोर बनाती है कि अंत में ब्रह्मा बाबा का हार्ट ही फेल हो जाता है। ऐसे ही ये तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, ऐसी एडवांस नॉलेज में भी माँ है, कौन है? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, दोनों शब्दों के अर्थ तो एक ही है। ब्रह्मा माने बड़ी माँ और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ, उससे बड़ी कोई माँ होती नहीं। तो सारे जगत की जो माँ होगी उसकी गोद में आसुरी बच्चे भी पलेंगे या नहीं पलेंगे? पलेंगे तो, और जब आसुरी बच्चे पलेंगे और बड़े हो जाएंगे माँ की गोद में तो माँ के ऊपर अधिकार जमाएंगे या नहीं जमाएंगे? जरूर जमाएंगे। जैसे ब्रह्मा दादा लेखराज के लिए, वैसे ही वो बात लागू होती है जगदम्बा के। एडवांस पार्टी में जगदम्बा तो सीता का पार्ट बजाने वाली अम्बा है, वो पूरे ही रावण की जेल में आ जाती है, क्योंकि सभी माताओं की माता है, जो भी माताएं हैं उन सब माताओं की माता है। माताएं बहुत दुखी होती है, तो जो माताओं की भी माता है वो भी सबसे ज्यादा दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? कारण क्या है दुखी होती है? जो सृष्टि की शुरुआत होती है, एकदम आरंभ होता है, तो ज्ञान सूर्य के साथ कौन कौन होते हैं जो साथ ही साथ प्रत्यक्ष होते हैं, आते हैं? त्रिमूर्ति होती है, त्रिमूर्ति में भी एक मूर्ति सबसे ऊपर दिखाई जाती है ऊंचे तबके में, दूसरी मूर्ति मीडियम तबके में दिखाई जाती है, और तीसरी मूर्ति नीचे की दुनिया के कनेक्टेड दिखाई जाती है। सबसे ऊपर वाली मूर्ति शांति धाम से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है और सबसे नीची मूर्ति दुख धाम से जुड़ी हुई है और जो बीच वाली नीचे में है वो न ऊपर से ज्यादा कनेक्टेड न नीचे से ज्यादा कनेक्टेड, ऊपर से भी उतनी ही कनेक्टेड और नीचे वालों से भी उतना ही कनेक्टेड, तो वो बैलेंस में। इसलिए जो बैलेंस में है और जो ऊपर है वो तो अधिपति बन जाते हैं शांति धाम शांति देवा और सुखधाम और सुखदेव। बाकी नीचे की मूर्ति दुखधाम की प्रतिनिधि बन जाती है। क्यों बन जाती है प्रतिनिधि? उस मूर्ति को किसका संग करेंगे ज्यादा लगता है? नीचे की दुनिया जो है, जो गिरने वाली दुनिया गिराने वाली दुनिया है, उस गिराने वाली दुनिया का उनको संग करना तो लगा होगा। तो ब्रह्मा जो है उसके ऊपर वो आखिरी बच्चे पूरा अधिकार जमा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप के कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? अगर बाप की रहबरी में रहे, कंट्रोल में रहे, तो माँ को बच्चे कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या? पहुंचेंगे? नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बाप समर्थ है, बच्चे कमजोर होते हैं, बच्चे माँ को भी कमजोर बना देते हैं, उनके ऊपर भी अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कभी कभी बाप शरीर छोड़ देता है, जैसे कि आज ने शरीर छोड़ दिया। चलो आज ने तो शरीर छोड़ दिया, जब एडवांस पार्टी में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तब माता से पिता का विछोह या पिता से माता का विछोह क्यों हो जाता है? मोह बाप मोह में छोड़ कर चला जाता है? नहीं नहीं, वहां तो स्थूल मौत हुई है कि आज में, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। और यहाँ यहाँ कौन सी मृत्यु होती है? यहाँ निश्चय की मृत्यु नहीं होती, यहाँ जो है अनिश्चय खत्म हो जाता है, पक्का निश्चय बैठ जाता है। तो आत्मिक स्टेज में जो आत्मा टिक जाती है, जैसे कि देहवान है नहीं, देहवान है नहीं, तो जैसे कि मृत्यु हो गई, देह देह से मृत्यु हो गई, माना आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, माना स्वर्गवासी हो गया या अमर हो गया या अमरनाथ हो गया। अमर धाम दो है, एक तो परम धाम, वहां भी आत्मा की मृत्यु और जन्म होने का सवाल नहीं है, और सुखधाम में भी मृत्यु और जन्म होने का सवाल नहीं। तो जो अमरनाथ है, अमरनाथ की स्टेज वाला है, वो सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि में देखेगा या किसी के ऊपर अधिकार जमाएगा? आत्मा आत्मा भाई भाई कब बनेंगे? आत्मिक स्टेज में। और जो मुरली है वो भी ये डायरेक्शन देती है, क्या कि तुम सब बच्चे क्या हो आपस में? आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर देह में आते हो तो दूसरे दूसरे संबंध शुरू होते हैं, भाई बहन का संबंध शुरू होता है, पति पत्नी का संबंध शुरू होता है, चाचा मामा काका ताऊ ढेर सारे संबंध शुरू हो जाते हैं। तो ब्राह्मण की दुनिया में हमें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य क्या मिला हुआ है? आत्मा आत्मा भाई भाई का लक्ष्य मिला हुआ। तो जो भाई भाई है, जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए, तो जो भाई के साथ बहन पत्नी के रूप में रह रही है, तो उसको पत्नी के रूप में समझा लेना चाहिए या पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर पूरी स्वतंत्रता देते हैं तो बाप के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई है, अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब गीत गा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की तरह, हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई। मुंह का रट्टा लगाने से थोड़ी हो जाएगा। प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम भाई भाई हैं तो भाई भाई को समान हिस्सा दिया जाता है ना। लोग की परिवार की प्रॉपर्टी होती है तो बड़ा भाई छोटे बड़े भाई का क्या फर्ज बनता है, छोटे भाई को समान अधिकार दे या अपने पास ज्यादा रख ले और उसको कम दे, बराबर दे ना। तो ये फ्रिक्शन पड़ जाने की वजह से, ये फ्रिक्शन पड़ जाने की वजह से क्या माता जगदम्बा को ये समझना चाहिए कि हम तो अलौकिक परिवार के हैं, अलौकिक परिवार में हमको माता की सीट पर किसने बिठाया, सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया ना। तो जिसने बिठाया है उसने कुछ काम करने के लिए बिठाया होगा ना, भले जो प्रजापिता है वो सीट पर बैठा हुआ है और बैठा हुआ आत्मा आत्मा भाई भाई समझ रहा है, लेकिन अपना कर्तव्य जगदम्बा बेटी को अपनाना चाहिए, कम से कम बेटी को। जैसे ओम राजे ने क्या कर्तव्य निभाया, बेटी थी ना, पत्नी तो नहीं थी, तो कर्तव्य क्या निभाया, नक्शे कदम पर कदम के ऊपर कदम रख करके चली है। कोई भी कदम जगदम्बा सरस्वती ओम राधे का ब्रह्मा बाबा के विरोध में नहीं है, ये साबित ही नहीं होता। ऐसे ही यदि के अंदर ये जरूरी था कि जो जिसको स्नेह करता है वो स्नेह करने वाला उसके नजदीक रहना चाहता है या दूर भागता है, नजदीक रहता है। विदेशी परंपरा में क्या होता है, हमारी बात नहीं मानी तो हम तो बेटा होते माना समान अधिकार चलता है। और भारतीय परंपरा में रचना और रचयिता का हिसाब रहता है, किसमें चाहे बाप हो बेटा हो चाहे बड़ा भाई हो, वो भी तो बाप समान माना जाता है। बड़ा भाई छोटे भाइयों के बीच में क्या माना जाता है, बाप समान माना जाता है। तो वो एक तरह से रचयिता और रचना का संबंध रहता है। रचयिता जो है वो रचना को कंट्रोल में होने रखने वाला होना चाहिए और रचना रचयिता के कंट्रोल में रहे। अगर कंट्रोल में न रही, कंट्रोल से बाहर होती है तो दुखी होगी, सुखी नहीं हो सकती। तो यही होता है विदेशों में, क्या होता है थोड़ी सी बात कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे हो गए और फटाक से संबंध तोड़ दिया, हमारा तुम अलग। उससे क्या होगा, जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे दूसरे धर्म के बच्चे वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं और हावी हो जाने के बाद उस माँ को इतना कंट्रोल में कर लेते हैं कि जैसे चाहते हैं वैसे न चाहते। जो मुरली की बातें हैं और मुरली वाला बातों को भी उलट पुलट करके उनका हाथ डिस्टर्ब करके और बुद्धि को खराब कर देते, जिसको कहते हैं प्रभावित कर दिया बुद्धि। बुद्धि जब प्रभावित हो जाती है तो फिर उससे चाहे जैसे काम लो, बाबा जी कहते प्रभावित माने प्रभावित माना पड़ जाए। जो जिससे प्रभावित होता है वो जैसे उसकी प्रजा बन जाता है, वो राजा बन जाता है, वो कंट्रोलर हो गया, वो कंट्रोल होने वाली आत्मा हो गई, वो अधिकारी हो गया, वो आधीन आत्मा हो गई। तो रावण संप्रदाय की जो भी विदेशी और विधर्मी आत्माएं हैं वो सीता को पूरा कंट्रोल में कर लेती, और कंट्रोल में आ जाने के कारण जब तक उस सीता का उद्धार नहीं होता है तब तक अयोध्या की स्थापना नहीं हो सकती। अयोध्या का मतलब क्या है, जहाँ युद्ध न होता हो, कहाँ युद्ध नहीं होता, सचिव में त्रेता में द्वापर में या कलयुग में, कलयुग द्वापर में तो युद्ध होता है और सचिव त्रेता में युद्ध नहीं हो, तो सचिव त्रेता ही अयोध्या हो। वो अयोध्या में राम का राज्य तभी होगा जबकि सीता सास हुई। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते। तो सीता है प्रकृति का सामूहिक रूप, चैतन्य स्वरूप। क्या जैसे माया भी रावण के पांच से कहे जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों को पुरुष की माया भी रूप में। ऐसे ही पांच पुरुष जो विकार कहे जाते हैं उनके साथ साथ पांच मुख और जुड़े हुए प्रकृति के मुख। वो प्रकृति के मुख है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये प्रकृति के मुख कहेंगे। ये संघात है प्रकृति पांच तत्वों का। तो पांच तत्व जड़त्व होते हैं या चैतन्य होते हैं। रावण के मुख जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चैतन्य रूप में हमारे सामने आते हैं डिस्टर्ब करते हैं या जड़ रूप में आते हैं? ये तो चैतन्य रूप में आते हैं। और प्रकृति के मुख चैतन्य नहीं है, प्रकृति प्रकृति जड़ है। माना माया रावण प्रकृति माता के ऊपर भी कंट्रोल कर लेती है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलाती है। तो जब प्रकृति माया रावण के सहयोगी बन जाती है, पूरी अधीन हो जाती है, तो रावण राज कर जाता है। अब क्या करना पड़े? इसलिए आगे कबा ने बोला प्रकृति को जब तक सात्विक सत्वप्रधान नहीं बनाया है तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहले चैतन्य प्रकृति को सात्विक बनाएंगे या जड़ प्रकृति को सात्विक बनाएंगे? प्रकृति योग के बगैर परिवर्तित नहीं हो सकती। ज्ञान सुना के उसे परिवर्तित करना चाहो तो ज्ञान तो उसने बहुत सुना है। यदि कुमार का दादी को कोई जाके ज्ञान सुनाए तो कुमार का दादी को पूरी मुरली जो भी सुना दे दीजिए। ब्रह्मा बाबा जो मुरली चलाते थे और कुमार का दादी एक बार उस मुरली को पढ़ ले तो जो की जो सारी मुरली रिपीट कर दी, तो उनको तो नशा खड़ा हुआ। हमसे ज्यादा ज्ञान कौन जाएंगे? वो किसी की बात सुनने वाली नहीं। ऐसे ही प्रकृति, वो भी प्रकृतिपति के संग में बहुत लंबे समय तक रहती। जितना प्रकृति प्रकृतिपति के साथ है, मिलन मेला मनाती है लंबे समय तक, उतना कोई भी मनुष्य आत्मा और संग में इतना मिलन मेला नहीं मना सकती। तो संग रंग ज्यादा किसको लगा? तो ज्यादा संग का रंग लगा ना, तो ज्यादा संग का रंग लगने से वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इतनी पावरफुल हो जाती है कि सारी सृष्टि का संहार करने में अपन संहारणी के रूप में, महाकाली के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तामसी बनती है तो सारी दुनिया का विनाश हो, और वही प्रकृति जब सात्विक बनती है तो जो भी सात्विक आत्मा होती है, श्रीमत पर चलने वाली सूर्यवंशी आत्माएं, उसकी पालन करती है। सत्व प्रधान बनती है तो पालना करती है, तमो प्रधान बनती है तो सारे संसार का संहार करती है।